ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजय थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण, ओम नमो शिवाय। तो फ्रेंड्स, आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग चैप्टर 17 श्रद्धा के विभाग डिविजन्स ऑफ फेथ पे बात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्णा इसमें हमें अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं वो हम सब बद जीवों पे एक्ट करते हैं। वो गुण कौन से होते हैं? सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। और इन तीनों प्रकृति के तीनों गुणों को पहले हम चूज करते हैं। जब हम इनको चुन लेते हैं फिर ये तीनों चुनते हैं हमारी एक्टिविटी, हमारी श्रद्धा, मतलब जो भी हमारे आस पास जो इंफॉर्मेशन होती है ना। देखो फ्रेंड्स, हम बद्ध जीव आत्माएं हैं, तो हम लोग की जो बुद्धि है ना सीमित है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है ना वो भी बहुत सीमित। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंगली जो चीजें है ना, कुछ राजसिक देखा या तामसिक देखा या सात्विक देखा, तो वो हमारे डेटाबेस में आ जाती हैं। फिर हम ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं जो हमने देखी है, जो हमने सुनी है। तो इसलिए पहले हम इन प्रकृति के तीन गुणों को चुनते हैं, फिर ये जो गुण हैं ये हमारे एक्टिविटी, हमारे श्रद्धा को ये चुनते हैं, है ना। और इन तीन गुणों के हिसाब से फिर उसकी श्रद्धा भी होती है। तो प्रकृति के तीन गुणों की तरह ही श्रद्धा के भी तीन प्रकार हैं। और जिसका जैसा गुण होगा, मतलब सात्विक प्रवृत्ति हावी होगी तो सात्विक श्रद्धा में एक इंडिविजुअल देवी देवताओं की पूजा करेगा। राजसिक गुण हावी होगा, राजसिक प्रवृत्ति हावी होगी तो यक्षों व राक्षसों की पूजा करेगा। और अगर तामसिक गुण हावी होगा तो भूत प्रेतों की पूजा करेगा। श्रद्धा तो है, लेकिन सबकी श्रद्धा अपने अपने गुणों के अनुसार है। फिर इसके बाद हमने समझा कि फूड के भी तीन प्रकार है, है ना। देखो भगवद गीता कितनी प्रैक्टिकल बुक है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी गाइड किया जाता है इसमें। तो जैसे हमने प्रकृति के तीन गुण कर लिए ना, बस इसी के अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ बांट देना चाहिए ना। तो इसलिए प्रकृति के तीन गुण चैप्टर अगर आपको समझ आ गया ना तो ये चैप्टर बहुत इजी है। तो हमारा खान पान भी फ्रेंड्स तीन तरह का, ये हमने कल समझा था, है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ नॉन वेज ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीजें यूज भी की जाती है और मंदिरों में भी चढ़ाई जाती है। कई मंदिरों में है ड्रिंक्स वगैरह चढ़ाई जाती है या बलि वगैरह दी जाती है, है ना। पहले होती थी, अब तो बंद हो चुका है, काफी तामसिक एक्टिविटीज की जाती है ना। और दूसरी तरफ प्याज लहसुन भी बना कर रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो ये डिफरेंस हमने समझा था कि इन गुणों के कारण ये डिफरेंस आ रहा है। फिर आगे हमने समझा इन तीनों गुणों के कारण तीन प्रकार तरह के खान पान हो सकते हैं, और कैसा भोजन सात्विक है, कैसा राजसिक और कौन सा तामसिक है, है ना। और फिर ये समझा कि किस गुण के प्रधान होने से कैसा फूड हमें पसंद आएगा, है ना। इसको समझा, सात्विक फूड स्वास्थ्य तथा आयु बढ़ाने वाला होता है। ताजा फल आता है इसमें, सब्जियां आएंगी ताजी, सैलड्स, दूध, दालें, चावल, गेहूं, है ना, सात्विक व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं, है ना। और यदि उसको भगवान को अर्पित करके, ऐसे खाने को भगवान को अर्पित करके भोग लगाकर ग्रहण किया जाए तो वो फिर दिव्य प्रसाद बन जाता है, है ना। तो हमें उसी तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। और फिर नेक्स्ट श्लोक में हमने समझा कि अगर हमें बहुत ज्यादा मसालेदार तीखा चटपटा खाना हम खा लेते हैं तो वो स्टार्टिंग में तो मजा देता है, जैसे कि राजसिक प्रवृत्ति है कि हमें स्टार्टिंग में मजा आता है लेकिन बाद में राजसिक गुण हमें दुख देता है, है ना। तो ऐसा खाना जो ज्यादा तीखा चटपटा मसालेदार होता है, है ना, ऐसा खाना स्टार्टिंग में तो मजा देता है लेकिन बाद में क्या देता है, वो दुख और शोक उत्पन्न करता है, मतलब बीमारियां पैदा होती हैं। और ऐसे खाने से फ्रेंड्स हमें बचकर चलना है। ऐसा भोजन राजसिक है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, श्लोक नंबर 10। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन व्योजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं में से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, श्लोक नंबर 10। खाने से 3 पूर्व घंटे पकाया गया स्वाधीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक में ना हम तामसिक खाना समझेंगे और इस श्लोक में ताजे भोजन की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है कि अगर हमने फ्रेश फूड नहीं खाया, ताजा भोजन नहीं खाया और अगर उसको बनाए हुए भी 3-4 घंटे हो गए, है ना, जो खाना बासा है, मतलब सड़ी गली चीजें होती है जिसमें, है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का एग्जांपल ले लो कि पहले ही कई दिनों से बना हुआ खाना वो सर्व करते हैं, है ना, बस उनके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है ना, उस खाने को हम लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। हम अपने बच्चों का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि हमारे बच्चों को ऐसा खाना बहुत पसंद है। हो सकता है ऐसा खाना 5-7 दिन पहले का बना हो, इस तरह का खाना जो बासा है, डीकम्पोज्ड है, जो बाहर से बहुत अच्छा लग सकता है क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं ऐसे लोग, लेकिन अंदर से उसकी पौष्टिकता नष्ट हो गई होती है ना। मैं तो पर्सनली आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती बाहर के खाने की, है ना। मैं जब भी खाना खाती हूँ मुझे टेस्ट भी नहीं लगता है। तो मैं बाहर पर्सनली आपको बताऊं तो बहुत बहुत कम जाती हूँ, खाना नहीं खाती मैं बाहर का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खाती ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत रेयर इज रेयर। तो जिसमें पौष्टिकता नष्ट हो गई हो तो ऐसा खाना तामसिक है। नॉर्मली हम लोगों की आदत होती है ना कि एक दिन खाना बना लो फिर उसको हम नेक्स्ट डे भी खा लेते हैं। दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा हैबिट है क्योंकि वो लोग सब लोग जॉब करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते का खाना बना कर रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में, तो वो फिर आते हैं अपना गर्म करते हैं माइक्रोवेव में और खा लेते हैं, है ना। तो फूड की देखो कितनी सारी एप्स बन गई हैं, लेकिन हमें क्या पता होता है कि कैसा भोजन है, कितने दिन पुराना है, किस तरह के हाथ लगे हुए हैं वहां पे, और सबसे बड़ी बात कि किस कॉन्शियसनेस से बनाया जा रहा है ना, या कितना पुराना खाना है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि 3 घंटे पुराना खाना तामसिक खाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का खाना बड़े शौक से खा रहे हैं, घर का 3-4 दिन पुराना बासी खाना खाते हैं, तो ये सब तामसिक फूड है और तामसिक लोगों को पसंद आते हैं। इसके साथ नॉन वेज की सारी आइटम्स तामसिक खाना, अगर तामसिक खाना खाएंगे तो तामसिकता आएगी हमारे अंदर, सिंपल है ना, क्योंकि चूज कर रहे हैं ना हम तामसिक खाना, वो थोड़ी कोई हमें खिला रहा है, हम खुद चूज कर रहे हैं। तामसिकता बढ़ेगी और फिर नींद आएगी, आलस आएगा, लटकाने वाला बिहेवियर आएगा, फॉल्ट फाइंडिंग बढ़ेगी। 16 चैप्टर हमने असुरी गुणों के बारे में पढ़ा है, वो बढ़ेगी कैसे, जब हमारा फूड तामसिक होगा, है ना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि श्रद्धा भी हमारी सात्विक राजसिक और तामसिक है और फूड भी हमारा सात्विक राजसिक और तामसिक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी भोजन जो हम बनाते हैं उसको फिर हमें भोग लगाकर खाना चाहिए, उस खाने को भगवान को अर्पित करते हैं, उस भोग को जब हम भगवान को अर्पित करते हैं फिर खुद ग्रहण किया जा सकता है, चाहे वो कुछ ही घंटे पूर्व क्यों ना बना हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। तो कम से कम ऐसे खाने को हम बासी खाने में की कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो प्रसाद रहेगा। वैसे तो अब रिकमेंड तो श्लोक में यही किया जा रहा है कि भाई खाना बिल्कुल फ्रेश बनाओ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना ज्यादा देर पहले ना बनाएं, मतलब खाना खाने से कुछ टाइम पहले बनाएं, तो ये रिकमेंड किया जा रहा है हमें श्लोक में। और हमें नॉन वेज ड्रिंक्स वगैरह से परहेज करना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा खाना बाहर होटल्स में खाना ठीक है, कभी कभी तो जाना चाहिए, है ना, लेकिन उसको हैबिट ही बना लेना, उस हैबिट को हमें नहीं डालना है। कभी कभी तो खाना ठीक है, फ्रेंड फैमिली के साथ एंजॉय करना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो है ना वो जाना चाहिए। तो हमें नशे वाली चीजें कम से कम इन चीजों को, जो हाई लेवल का तामसिकता है ना, ये होटल में खाना ये फिर भी इतना तामसिकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत कम जाते हैं, है ना, लेकिन नशे वाली चीजें होगी, है ना, नॉन वेज खाना, रूटीन में ही फास्ट फूड खाना, इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, ये सब तामसिक कैटेगरी में। तो इस श्लोक में हमने समझा कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, और सात्विक है फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स, दूध के बने आइटम्स, चावल, गेहूं से बनी बहुत सारी चीजें होती हैं, ओट्स हैं, दलिया है, बहुत सारी चीजें, सूजी है, दालें, ये सब सात्विक है और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी बेस्ट है। रास्तिक भोजन में बहुत सारे मिर्च मसाले होते हैं, उनसे हमें बीमारियां बढ़ती हैं, और तामसिक पुराना बासा जूठा सड़ा फूड है, और जैसा कि आप सब मानते हो कि 10-15 साल से डिप्रेशन बहुत बढ़ गया फ्रेंड्स, है ना। उसका एक कारण हमारा तामसिक और रासिक भोजन है। अगर हम अपना बचपन देखें तो हमारी मदर्स हमें फ्रेश खाना देती थी, बाहर के खाने का कोई कल्चर नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो वाकई हमारे घर में बिल्कुल बाहर के खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा कि वो बाहर खाना खाने जा रहे हैं, कभी भी नहीं देखा। मतलब नॉट ए सिंगल डे कि हमने बाहर कभी डिनर किया हो, लंच किया, मुझे याद ही नहीं है कभी। वो पहले क्या था कि मेरे नानी जी के घर वहीं पे है चंबा में, तो हम वहां पे पहले हम जैसे जाते थे, अब भी जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जाना है और वहां पे खाना खाना है ना। मतलब किसी घर खाना खा सकते हैं, लेकिन बाहर खाना खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। आज से 15-20 साल पहले देखे तो, है ना। तो अब देखो तो हम अपने बच्चों को देखते हैं तो कितना ज्यादा कल्चर बढ़ गया ये कि भाई बाहर का खाना खाना है, और बाहर खाना बहुत टेस्टी है, घर का सादा दाल चावल तो पसंद ही नहीं आता। तो पहले बाहर के खाने का कोई कल्चर नहीं था, है ना। उसमें ज्यादा स्टोरेज करने का भी कोई सोच नहीं होती थी, फ्रेश ही खाना दिन में बनाना है, फ्रेश ही रात को बनाना है। तो वो खाना सात्विक खाना होता था। सात्विक भोजन में फ्रेंड्स देखो मेहनत ज्यादा होती है, इसलिए आज की जनरेशन बाहर के खाने पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया ना। और सात्विक खाने से कॉन्शियसनेस भी सात्विक रहती है ना। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने लोगों में संतोष बहुत ज्यादा होता है, उनमें वर्किंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती थी। फ्रेंड्स इसमें मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे हमारी हेल्पर्स होते हैं ना जो, है ना, जैसे मैंने सब जगह ही ऐसा होता है मुझे लगता, लेकिन मैंने पूना में देखा है कि वो बिल्कुल भी पुराना खाना लेना पसंद नहीं करती। उन्होंने क्या करना है, उनके पास कोई फ्रिज नहीं होती है, उन्होंने मॉर्निंग में आटा गूंदना है, सब्जी बनानी है, उसी वक्त खत्म कर देना सब। फिर दिन में उन्होंने अलग आटा गूंदना है, सब्जी बनानी है, खत्म कर देना है। रात का भी ऐसे सीन है ना, चावल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, कोई भी मतलब दिन का रात को यूज नहीं करते ये लोग। तो मैंने इनमें देखा है सच में, ये मतलब खाना सही खाते हैं बिल्कुल ही। मैंने पूना में खास कर देखा, बिल्कुल पुराना खाना लेना ये लोग बिल्कुल भी, फ्रेश खाना बना हूं वो ले लेंगे। वो खुद बोलती हैं, जैसे मेरी अपनी हेल्पर है वो बोलती है कि वो हमें खाना देते हैं लेकिन हम नीचे जाके फेंक देते हैं, क्योंकि हम नहीं लेके जाते घर में, हम फ्रेश खाना ही खाते हैं, है ना। और देखो उनकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी होती है, हम लोग कर सकते हैं इतना काम, कितना काम करती हैं वो, कितनी मेहनत करती हैं, है ना, और फ्रेश रहती हैं। कितने लोग घर काम करके आती हैं और देखा आपने कितनी कैपेसिटी होती है उनकी काम करने की। इतनी ज्यादा हमारी फैसिलिटीज बढ़ रही है ना, हम लोग उतने ही ज्यादा लथार्जिक हो रहे हैं, है ना। उतने ज्यादा हमें लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम सोचे ना तो बहुत कम काम करते हैं हम लोग, है ना। तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बहुत कम होती जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं फूड का बहुत रोल है फ्रेंड्स, है ना। तो जो पुराने लोग होते थे वो काम को लेकर बहुत पेशेंस रखते थे, आज के जनरेशन में देख लो पेशेंस की बहुत कमी है, है ना। तो इसका एक मेजर कारण है उनका तामसिक और रासिक भोजन। इससे हमें बीमारियां भी लग रही हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं और हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर हमें लाइफ में कुछ करना है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार लेना चाहिए। अगर हम खुद सात्विक आहार लेंगे तो हम बच्चों को भी समझा पाएंगे, है ना। अगर हम ही खुद बाहर का खाते रहे तो हम बच्चों को क्या ही सुधार पाएंगे, है ना। और बेस्ट तो ये कि अगर हो सके तो भगवान को पहले अर्पित करके खाना खाएं, फिर उस खाने को बाकी बचे खाने में मिक्स करो, और वो भोग फिर हमें जो कि प्रसाद ऐसा भोजन दिव्य है, है ना। मतलब जो भगवान को हम अर्पित करें खाना, फिर उस खाने को बाकी बचे खाने में मिक्स करना है, और फिर वो भोग सारा परिवार खाए, तो हमें क्या मिलता है, प्रभु की ब्लेसिंग्स मिलती है। हम रोज ही प्रसाद जो हमें मंदिर में मिलता है, हम घर में ही वो प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं, है ना। तो ऐसा भोजन प्रसाद है, दिव्य है, और इसकी इससे हमारी कॉन्शियसनेस भी सात्विक होती है। और अगर हम जहाँ पे भोग नहीं लगा सकते, है ना, कहीं हम गए हैं बाहर, तो वहां पे हम प्रार्थना करके ईश्वर का धन्यवाद करके अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा अहंकार घटता है और प्रभु की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। देखो भगवान कृष्ण हमें खाने के बारे में भी कितनी प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं हमें, है ना। तो भगवद गीता में केवल हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं हो रही है, है ना, वो भी हो रही है, लेकिन खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, है ना, ये छोटी छोटी बातें भी भगवद गीता हमें समझा रही है ना। देखो फ्रेंड सिंपल बात है, हमारे खराब खाने पीने से ना हमारा मन खराब होता है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स में हमारे कहा गया कि जैसा अन्न आप खाओगे वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसे आप पानी पीते हो वैसे आपकी वाणी होती है, है ना। तो खराब खाने पीने से हमारा मन खराब होता है, हमारा मन खराब होने से हमारे विचार खराब होते हैं, और अगर विचार खराब होंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे, हम भक्ति में आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो भगवान ने इन तीन श्लोकों में हमें बताया है कि भोजन भी सतो रजो और तमो तीन प्रकार का होता है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी।
श्लोक नंबर 11, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, श्लोक नंबर 11, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है, वो फल की इच्छा नहीं रखते। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखो फ्रेंड्स, भगवान श्रद्धा की बात कर चुके हैं, भगवान ने फूड की बात भी हमें समझा दी, अब इस श्लोक में भगवान यज्ञ की मीन्स सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं। यज्ञ, यज्ञ मतलब अपने कर्मों को जो ड्यूटी समझकर हम कर रहे हैं, फल की इच्छा से नहीं करते, मतलब कोई भी ऐसा कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से किया जाए और उसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, फलों की इच्छा ना हो, है ना। सब काम ऐसे लोग इस तरह से करते हैं कि मेरी ड्यूटी है। जब हम यज्ञ वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि अग्नि है, बहुत सारे पंडित बैठे हैं और आग में कुछ आहुतियां डाली जा रही है। हमें क्या लगता है कि केवल वो ही यज्ञ है। वो यज्ञ का फ्रेंड एक रूप है। यज्ञ एक्चुअली हर तरह का कार्य है जो एक मनुष्य कर रहा है, यदि उसको भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है, है ना, कि भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है और मुझे उसको बेस्ट वे में करना है, शुद्ध मन से जो किया जा रहा है वो यज्ञ है, है ना। तो इस श्लोक में भगवान सात्विक यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि सात्विक यज्ञ क्या है। जब सात्विक गुण किसी का प्रधान होगा, वैसा हर इंडिविजुअल अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी भी यज्ञ रूप में करने वाला है। मतलब कि अगर किसी में सात्विक गुण प्रधान हो जाएगा, वो खाली वो दो टाइम की पूजा अर्चना से ऊपर उठ जाएगा, है ना। ये लास्ट स्टेज थोड़ी है कि खाली दो टाइम की पूजा कर ली, बस हो गया, भगवान को खुश कर लिया। भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हें लाइफ ऐसे जीनी है ना। भगवान हमें कितना कुछ देते हैं, तो क्या हमसे बदले में कुछ मांगते हैं? तो हमें क्या कहते हैं भगवान? हमें भगवान कह रहे हैं कि भाई जो जीवन मैंने तुम्हें दिया उसमें खुश होकर रहो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा जो भी तुमने किया अभी तक, है ना, उसको सब कुछ भूल के एक सात्विक लाइफ जीना भगवान हमें रिकमेंड कर रहे हैं भगवद गीता में। तो ऐसी सारी ड्यूटीज जो सात्विक रूप में पूरी करें हम, अगर उसको भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से अगर हम अपनी ड्यूटीज को करें और उसमें हम कोई फलों की इच्छा ना करें, कोई एक्सपेक्टेशंस ना करें, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी लाइफ मुझे पसंद है तुम्हारी, है ना, ऐसा लाइफ तुम्हारी सात्विक यज्ञ वाली लाइफ है। तो वो अपनी ड्यूटीज को स्क्रिप्चर्स के अनुसार समझकर कि मेरी क्या ड्यूटीज है क्या नहीं है, एक इंडिविजुअल ऐसी लाइफ लीड करता है ना, कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मुझे क्या ड्यूटीज करनी चाहिए, और अपनी ड्यूटीज इस तरह से करें कि वो भगवान को खुश कर सके। फ्रेंड्स, हमें लगता है ना कि हम बहुत कुछ करते हैं, हम ये हैं, हम वो, हम अपने आप को पता नहीं क्या कुछ नहीं समझ लेते, कितना अहंकार होता है हमारे अंदर, है ना। देखो सूरज अपने आप निकल रहा है ना, ये दिन अपने आप आता है, रात अपने आप आती है, सांसें अपने आप चल रही हैं, है ना, हमारा डाइजेशन सिस्टम अपने आप चल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं? आपको बोला जाए कि आप अपनी एक सांस को रोक दो, अगली सांस लेना, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हमारी कुछ भी औकात नहीं है फ्रेंड्स, है ना, और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। सब कुछ अपने आप हो रहा है ना, एक मतलब सिस्टमेटिकली भगवान ने सब कुछ हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना, लेकिन हमने अपने आप को ही, जो सबसे डिफिकल्ट जो यंत्र है ना, जो अपने आप को समझना, उसको नहीं समझ के हम दूसरों के पीछे भागते हैं कि मैं उसके बारे में समझ लूं, उसके बारे में पता कर लूं कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अरे हमें अपने बारे में तो पता नहीं होता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है ना, मेरे अंदर कितना कुछ चलता है जो जरूरत नहीं है। तो हमें फ्रेंड्स भगवान को समझने के बजाय हमें अपने आप को समझना है। जो मनुष्य जीवन मिला है ना, जो मनुष्य का जो ये देह मिली है ना, इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। जो हम सोचते हैं, ये मन क्या है, है ना, सोल क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे सुख दुख मिलते हैं हमें, है ना। तो इन चीजों में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना अगर हम फ्रेंड्स, तो लगता है ज्यादा बेटर है अगर हम दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर ना करें और हम अपने लाइफ में देखें कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज रहना, है ना, मतलब अपनी लाइफ की ड्यूटीज को इस तरह से करना कि मैं भगवान को खुश कर रही हूँ। जो भी मुझे ड्यूटीज मिली हैं, घर का ख्याल रखना है या बच्चों का ध्यान रखना है या बाहर की ड्यूटीज है, तो मुझे इस तरह से करनी है कि भगवान मेरे हर काम से खुश हो जाए, कि भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, है ना, उसको मैं बेस्ट वे में कर सकूं। भगवान ने देखो सब कुछ हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ, हमें एक फैमिली भी मिल गई है, बच्चे भी मिल गए हैं, सब अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन हमें क्या है, हमें नहीं खुश होने की बीमारी है। देखो ह्यूमन टेंडेंसी है फ्रेंड्स कि जो चीज हमें नहीं मिलती हमारा मन बार बार वहीं पे जाएगा। या आप 70 इयर्स के हो जाओगे, 60 इयर्स के हो जाओगे, तब भी आप यही सोच रहे होंगे कि मेरे लाइफ में क्या क्या मुझे नहीं मिला है ना। तो बेटर है कि हम इस चीज को अभी समझ जाए, है ना, कि मेरा मन तो बार बार मुझे वहीं पे लेके जाता है कि मुझे जो चीजें नहीं मिली है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा मन बार बार जाता है ना, हमें करना है एक पेपर लेना है, उसमें हमें लिखना है कि जो जो चीजें हमें मिली हैं, जो चीजें मिली है सिर्फ उसकी लिस्ट बनाओ। पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी, कि हमें दूसरों से कंपेयर करें ना हम, तो हमें पता चलेगा कि हमें हमारे पास कितना कुछ है जो हमारे पास मिला है, और हम ऐसी डिजायर्स करते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। सारी डिजायर्स हमारी पूरी नहीं होनी है, या तो हम फिर अपनी लाइफ इस तरह से बना लें, है ना, भगवान की इच्छा अनुसार अगर हम अपनी लाइफ जिए तो भगवान कुछ भी फिर पूरा करते हैं, है ना। या तो फिर इतना विश्वास करो भगवान पे, और फिर अर्जुन जैसा डिवोटी बनना है हमें, भगवान कृष्णा तो है ही है लेकिन हम तो अर्जुन जैसे डिवोटी नहीं है ना, है ना। अगर हमें सब कुछ चाहिए लेकिन जीना हमें अपने मन गढ़ंत तरीके से है, तब तो ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है हमें, है ना। कुछ चाहिए भी ना भगवान से कोई कोई भी चीज, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि सिंपल तुम जैसा मैं चाहता हूँ ना, एक तुम्हें सिंपल मनुष्य जीवन दिया है, तुम बस उसके अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट दो, अपना खुश रहो। सिंपल भगवान कह रहे हैं कि भाई एक अच्छा जीवन व्यतीत करके आओ। क्या बताएंगे हम बताओ भगवान से कि क्या क्या आपने क्या क्या नहीं दिया हमें, आपको लगता है बोल पाएंगे भगवान को कि क्या क्या नहीं दिया आपने हमें बताओ। ये चीजें नहीं दी आपने, उसको तो ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको इतनी गाड़ियां दे दी, उसको इतने घर दे दिए, और मुझे तो एक घर भी नहीं दिया, मुझे तो ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। फिर भगवान कहेंगे ना, मैंने तुम्हें सेहत भी दी, तुम्हें सांसें ही दी, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली दी, तुमने उनको गिना, वो तो हम गिनते नहीं है जो जो चीजें हमें मिल गई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई हमें सिंपल लाइफ जो भगवान ने दी है ना, है ना, उसपे हमें करना कुछ नहीं है, उसको खुशी खुशी जीना है अच्छी तरह से। कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो फ्रेंड्स बिल्कुल हम कैपेबल है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। जो हम ठीक नहीं कर सकते, है ना, देखो कुछ ऐसी बातें होती है जो हम ठीक नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना है हमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के आगे प्रार्थना कर सकते हैं हम। जो सात्विक डिजायर्स होंगी, अच्छी डिजायर्स होंगी, है ना, भगवान अपने हर भक्तों की डिजायर सारी पूरी करते हैं फ्रेंड। हमें मांगना भी नहीं पड़ता, है ना, जब उनको पता होता है कि मेरे भक्त को ये दुख है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने भक्तों की बात नहीं सुनते होंगे? भगवान तो हर चींटी से लेकर हाथी तक की बातें सुनते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे, है ना। तो हमें विश्वास रखना है, मेन है श्रद्धा रखनी है भगवान पे। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज अगर कोई कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र के निर्देशानुसार हम अपनी एक्टिविटीज करें। हमें पता ही नहीं होता सबसे पहले बात तो कि हमारे शास्त्र बोल क्या रहे हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हमें क्या समझा रहे हैं, भगवद गीता हमें क्या समझा रही है। नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसा पहले हमें घर पे माहौल मिला है उसके अनुसार अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, है ना, या फिर स्कूल कॉलेज में जो कुछ सीखा हमने, फिर सोसाइटी में जो सीखा, है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने रूल एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं। मतलब जो हम सीखते हैं चीजों को, देखते हैं, जो जैसे संगति हम बनाते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम रूल रेगुलेशन बना लेते हैं कि अच्छा ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे रिलेटिव्स या जो फ्रेंड्स कर रही हैं, अच्छा ये हमें करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना, इसके अकॉर्डिंगली तो हम अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं, क्योंकि हमने स्क्रिप्चर्स तो पढ़े नहीं होते, है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स हमारे लाइफ के पार्ट थे ही नहीं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है ना, जितनी चाहते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, कहाँ से आएगी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वहीं से इन्फॉर्मेशन है, या जो हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया, तो जो हम देखते हैं, है ना, अगर आप टीवी में लगा बैठे न्यूज सुन रहे हो, या फिर आप सीरियल्स देखते रहते हो, या नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते रहते हो, तो क्या ही नॉलेज बढ़ेगी, क्या इन्फॉर्मेशन आएगी आपको, है ना, जब तक कि आपने अपने स्क्रिप्चर्स ना पढ़े हो। अब देखो जैसे हम लोग फोन चलाते हैं, है ना, तो उसमें कितने सारे वीडियोस वगैरह आते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे वीडियोस मैं अपना देख रही थी, मेरे मतलब 15-20 मिनट तो ऐसे बीत जाते थे, है ना, मतलब कोई भी एक वीडियो खुलता था, चाहे वो अच्छे वीडियोस क्यों नहीं खुल रहे हो, है ना, अच्छे भी आते हैं बेकार वीडियोस भी आते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वो जो बेकार चीजें आती थी उनको बिल्कुल ही वो कर दिया कि वो मेरे पेज पे आए ही ना, और फिर मैंने ये सब देखना भी थोड़ा कम किया, क्योंकि वो बहुत टाइम जाता है फ्रेंड्स, एक बार बैठ जाओ तो मतलब लगता है कि चलो 5 मिनट मैंने मैसेज इधर को उधर डालना है, तो चलो 2 मिनट मेरे को फोन चलाना है ना, लेकिन 2 मिनट के चक्कर में मेरे को 15-20 मिनट मतलब ऐसे जाते हैं। और सुबह तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ फोन की फ्रेंड्स, बिल्कुल, जब आप फर्स्ट मेरा 10-10.5 मैसेज देखते हो ना, तो मैं सुबह से मैक्सिमम फोन तभी खोलती हूँ, बड़ा रेयर है कि उससे पहले मैंने फोन खोला हो, है ना, क्योंकि फोन मतलब हाथ में आ जाए तो हमें पता नहीं होता कि कैसे टाइम निकल जाता है ना, और हमें पता भी नहीं होता हमें देखना है क्या नहीं देखना है, है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली फिर हम चॉइस बनाते हैं, है ना। वही हम मैं जो आपको समझा रही थी कि हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं या सोशल मीडिया है, फोन है, टीवी है, कुछ भी है ना, लोग भी होते हैं उस पे, सोशल मीडिया भी है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, तो उस वो फिर हमारे अंदर डेटाबेस में चली जाती है ना, हार्ड डिस्क में इकट्ठी हो जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं चॉइस लेती हूँ कि मेरे को कौन सी दिशा में जाना है, मेरे को रास्तिक वाली दिशा में जाना है कि मेरे को सात्विक की तरफ जाना है या फिर मुझे तामसिक की तरफ जाना है ना। तो अगर मैंने अच्छी चीजें देखी, सत्संग वाले वीडियोस देखे या भजन सुने, तो मेरी चॉइस ऑटोमेटिकली ना कि सात्विक हो जाएगी ना, चॉइस ली मैंने। तो फ्रेंड्स वही मैं बोलती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को बड़ा डीपली पकड़ना है ना। ये जरूरी नहीं कि हमारे आसपास के लोग जो हम सोशल मीडिया पे हम क्या देख रहे हैं सुन रहे हैं इसका बहुत इम्पैक्ट आता है। तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे आसपास, उसके अकॉर्डिंगली हम रूल एंड रेगुलेशन बना लेते हैं, है ना। क्योंकि स्क्रिप्चर्स तो हमारे पार्ट थे नहीं हमारी लाइफ के, इसलिए कई बार हमने जिन चीजों को हम फॉलो कर रहे होते हैं ना, है ना, जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो क्या हमें क्वेश्चन करना है, क्या उन्होंने अपने शास्त्र पढ़े हैं, क्या वो सही कर रहे हैं। आज हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे थे क्या उनका जीवन सही था, है ना। लेकिन हमें क्या लगता था कि नहीं नहीं शायद ऐसी लाइफ जीते हैं, है ना, इस तरह की लाइफ जीना ही शायद हमें रिकमेंड किया जाता है ना। तो हम दूसरों को देख के हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जैसे हमने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हुए हैं तो उन्होंने भी नहीं पढ़े हुए हैं ना। और एक सोल की यात्रा फ्रेंड्स इस जन्म की नहीं होती, वो पीछे से भी बहुत कुछ सीख कर आई होती है। कई जन्मों में हमने ये चीजें पढ़ी होंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे संस्कार पड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे संस्कार पड़ते हैं। अब देखा आपने कई बार, मैंने ये बात चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि कई लोगों ने भगवद गीता नहीं पढ़ी होती है, है ना, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सात्विक लाइफ फॉलो कर रहे होते हैं ना। उन्होंने कोई अपने शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे कि जिन्होंने अपने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, और ऐसे लोग जब शास्त्र अपने पढ़ते हैं ना उनकी ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है। देखो अब उसको रिफाइन कैसे करना है, उनको बेटर कैसे किया जा सकता है ना, चीजों को कैसे रिफाइन करना है, कैसे मैं अपनी लाइफ को बेटर करूं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्क्रिप्चर्स का सहारा लेना चाहिए, है ना। जैसे अब हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को अपना बेस बनाएं, ना कि अपने जो थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको अपना बेस नहीं बनाना है ना। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, हमें बहुत कुछ ऐसा जो हमें पता नहीं है। तो जब हम इन बातों को समझ लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली जब हम परफॉर्म करेंगे, जहां पे कोई फल की इच्छा ना हो, जहां हर व्यक्ति समझे कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है। देखो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी इच्छा है कि मैं जा रहा हूं रोज तो मैं भगवान से डिमांड करूंगा कि मेरी सुख सुविधाएं बनी रहे, या मेरा पर्टिकुलर काम हो जाए तो मैं पैसे भी चढ़ाऊंगा और मिठाई भी चढ़ाऊंगी। तो भाव से तो यही लगेगा कि वो पूजा कर रहा है भगवान की, बड़े भाव से वो जा रहा है, रोज मंदिर में जा रहा है ना। लेकिन ये एक्टिविटी फ्रेंड सात्विक यज्ञ नहीं कहलाएगी। अगर वही इंडिविजुअल इस बात को समझे कि मैं तो भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा हूं, मैं तो भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं, भगवान के प्रति ये मेरी सेवा है, ड्यूटी है, है ना, और ये जरूरी है। अब अगर कोई इस भाव से जा रहा है और वहां पे फल, मिठाई, पैसे या फिर एक पुष्प भी भगवान को इस भाव से चला रहा है कि प्रभु ये सब आपका ही है और आपको खुश करना मेरा कर्तव्य है ना, तो वही एक्टिविटी उस इंडिविजुअल की सात्विक यज्ञ हो जाती है। बाहर से देखो एक्टिविटी सेम है ना, बाहर से जो दो व्यक्ति जा रहे होंगे हमें हमें क्या लगेगा कि दोनों ही सात्विक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भी उनमें सात्विक गुण ज्यादा है तो मंदिर जाते हैं रोज, हमें दोनों ही अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर से इंटेंशन अलग है दोनों की। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, है ना, हम सबको भगवान की हमें जिम्मेदारी मिली है, अब उसको हम भगवान का आशीर्वाद समझकर निभाना शुरू कर दे कि ये मेरी भगवान द्वारा दी गई सेवा है और वहां मुझे फल की इच्छा नहीं करनी कि हमारे बच्चे ये बन जाए वो बन जाए और मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, मुझे अभी उनकी सेवा करनी है ताकि बुढ़ापे में ये लोग मेरी सेवा करेंगे, है ना। तो इन सब बातों से उठकर हमें इन बातों को अपनी जिम्मेदारी समझना है और एक संस्कार युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देनी है उनको, ऐसा माहौल बनाकर कि वे लोग भी अपना डिवोशनल प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ा सके, है ना। थोड़ा थोड़ा जितना भी हम समझा सकते हैं उनको समझाना है ना। और फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना है कि वो हमारी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चाहे बेशक अभी वो नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनको भी ये एटमोसफियर है ना अच्छा लगता है। वो भी जब उनका टाइम आएगा तो वो भी करेंगे, है ना। लेकिन हमें ये सोचकर रुक नहीं जाना है कि अभी हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं यार, वो तो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बिल्कुल छोटे होते अगर हम ये बातें उनको सिखाई होती, है ना, बिल्कुल ही बचपन में। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि हमारे सेशन में जैसे कई लोग बहुत ही यंग है, उनके बच्चे बिल्कुल अभी भी कुछ छोटे छोटे हैं, ब्लेस्ड हो कि आप उनको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हो, है ना। पूजा पाठ तो हम करते थे, लेकिन भगवद गीता पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, ये तो डिफरेंट है ना बिल्कुल। तो ऐसा माहौल अगर हम उनको बनाकर देंगे बचपन से ही, बहुत ही अर्ली एज में, तो फिर ये सात्विक यज्ञ कहलाता है। लेकिन ठीक है, अगर हम अभी लेट हैं तब फिर भी हमें करना है, जो भी हमने गलती की है उसको समझना है। और गलतियों को, मेन बात मैं यही बोलती रहती हूँ कि गलतियां तो हम करते रहेंगे बस, लेकिन कोशिश करना है कि गलतियों को अब रिपीट ना करें। और फिर कई बार हम सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, जैसे हम बड़ों को कई बार सुनते हैं, है ना, बच्चों को बड़ा करने में, आज देखो हमारी बात नहीं सुनते, है ना, उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं। तो सेक्रीफाइस फ्रेंड्स हमें समझना है, हर माता पिता करते हैं, हर व्यक्ति करता है। तो सैक्रिफाइस चाहे टाइम को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, या फिर अपने रिलेशंस को लेकर हो, लेकिन उस सैक्रिफाइस का मतलब अगर फल की इच्छा है, अगर उसके पीछे डिजायर्स, नेम फेम पाना है, तो वो सात्विक कैटेगरी में नहीं है। अगर सात्विक करना है तो हमें बच्चों को बड़ा ये मानकर करना है कि मेरे बच्चे भगवान ने जिम्मेदार दिया मुझे, तो मैं बच्चों की नहीं भगवान की सेवा कर रही हूँ, है ना। इस तरह से अपने काम करने हैं कि ये मेरी ड्यूटी है। देखो फ्रेंड, जो लोग कुछ एक्टिविटीज करते हैं, यज्ञ वगैरह भी करते हैं ना, जैसे अपने पूर्वजों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़ों के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, है ना, अगर वो उनके लिए कुछ यज्ञ वगैरह या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनमें उनका खुद का स्वार्थ नहीं है, इसलिए करते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, तो फिर ऐसा यज्ञ कौन सा कहलाता है? ऐसा यज्ञ सात्विक है। तो हमें ये समझना है कि डीपली समझना है कि हमारे स्क्रिप्चर्स हमें क्या बता रहे हैं, कि मैं अपने समय को किस तरह से यूज करूं कि मैं भगवान को खुश कर सकूं। तो इस तरह से अगर कोई चलेगा तो वो सात्विक यज्ञ है। वैसे ही एक बिजनेसमैन भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अपनी हेल्थ को अवॉइड करके, अपनी फैमिली को अवॉइड करके, चाहे बिजनेसमैन है चाहे सर्विसमैन है ना, तो मतलब अगर कोई हेल्थ को अवॉइड करके, अपनी फैमिली को अवॉइड करके फुल टाइम अपने बिजनेस या जॉब को दे रहा है ताकि वो नेम फेम धन कमा सके, उसमें अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं देख रहा है, फिजिकल हेल्थ को नहीं देख रहा है, फैमिली हेल्थ को नहीं देख रहा है ना। गोल क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नाम कमा सकूं, पैसा कमा सकूं, बिजनेस में, जॉब में आगे बढ़ सकूं, तो सैक्रिफाइस तो वहां भी है, लेकिन इसके पीछे मटेरियल फलों की इच्छा है और वो नेम फेम के पीछे भाग, तो वो यज्ञ सात्विक कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। इसको हम कल के श्लोक में समझेंगे, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीजेस थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। दी आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन था। ये मतलब चैप्टर काफी डिवाइन है, मतलब हमें जो डे टू डे जो हमारी लाइफ है उसके बारे में काफी कुछ नया सीखने को मिला। तो आज के श्लोक से जो मेरी लर्निंग बनी है यही है कि हमें सात्विक जो फूड है वही खाना है, बिकॉज कि जो सात्विक फूड है उससे हमें फुल ऑफ मतलब एनर्जी, ज्यादा हम एनर्जेटिक रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे, और जो हमारे जो ख्याल है, जो थॉट प्रोसेस है, वो भी पॉजिटिव और सात्विक रहेगा, जो कि हमें डिवोशन के रास्ते में भी हेल्प करेगा और हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी, क्योंकि हम अच्छे जो है अच्छे थॉट्स होंगे तो हम अच्छे अच्छा अच्छा बिहेवियर करेंगे, तो वो हमें हेल्प करेगा। और ये लर्निंग बनी है कि अगर हम कोई भी काम या किसी की हेल्प कर रहे हैं या जो भी मटेरियल ड्यूटीज हम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी स्वार्थ और या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के या किसी फल की इच्छा के बिना अगर हम करेंगे तो वो सात्विक यज्ञ कहलाएगा, अदरवाइज वो तामसिक में आएगा और हम वो तामसिक गुण कहलाएगा, मतलब वो किसी मतलब कैटेगरी में नहीं आएगा, तो वो हम अपने मतलब के लिए करेंगे। तो अगर हम विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन और विदाउट किसी फल की इच्छा के करेंगे तो वो सात्विक यज्ञ कहलाएगा। और मैं अपना बताऊं कि जैसे आपने कहा कि हमें अपनी जो ब्लेसिंग है वो अपने एक पेज पे लिए, हम 99% चीजें जो हमारे पास हैं हम कभी उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, बट जो एक भी अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसके लिए काफी बोलते हैं, हम उसी के पीछे भागते हैं, हाँ ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे कि मैं अपना बताऊं, सत्संग में ज्वाइन करने से पहले तो हम भी ऐसे थे कि बस जो चीज प्रॉब्लम था उसको बस उसी के बारे में सोचते रहना, बट अभी ऐसा नहीं है, थॉट प्रोसेस टोटली चेंज हो गया है, तो काफी पॉजिटिव ही रहते हैं। तो जैसे मैं आज का बताऊं तो मुझे आज ब्लेंडर से कट लग गया उंगली में, तो मैंने अदरवाइज अगर पहले क्या बताऊं तो ऐसे होता है मुझे लग गई, अब मैं क्या करूं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पहले ऐसा सोचती थी मैं, बट आज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो काफी लगी, तो मेरे को ऐसा नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है हम भगवान जी मुझे हिम्मत देंगे। मैंने अपनी सारी मटेरियल ड्यूटी बेशक एक हाथ से की बट करी बिना किसी की नेगेटिव थॉट के साथ, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने कहा हाँ मेरी गलती थी, मुझे गलती से बटन ऑन हो गया तो लग गई। तो उसके बाद ऐसा मैं दिन को बैठी थी तो मुझे ऐसे ध्यान आया कि मतलब अगर हमारे बॉडी पार्ट्स भी एक उंगली में लगने की वजह से मुझे एक हाथ से करना पड़ रहा है तो मतलब थोड़ा सा परेशानी तो होती है, बट मुझे ऐसे माइंड में आया कि मतलब अगर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स भी अगर हमारे सही हैं तो फिर भी हम कितने ब्लेस्ड हैं, तो हम लेकिन फिर भी जो लाइफ में कुछ ना कुछ कमी या कुछ छोटी मोटी कमियां जो होती रहती हैं, किसी किसी को फाइनेंशियल है या किसी को कोई भी है प्रॉब्लम्स होती है जैसे लाइफ में हर किसी को, तो बारे में सोच रहते हैं, लेकिन हम जो अगर हमारे बॉडी पार्ट्स अगर मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसलिए भी हमें भगवान को मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं बट हम उस चीज के बारे में नहीं सोचते। तो मैं सोचती कि जैसे कट की वजह से भी कितना प्रॉब्लम है, तो एक उंगली की वजह से, तो उंगली तो कितना छोटा सा पार्ट है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ब्यूटीफुल रिव्यू कोमल जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपने ब्लेसिंग्स को बिल्कुल सच में काउंट नहीं करते, हम सब ऐसे ही है, है ना, हमें जो छोटी सी चीज एक मिलती नहीं है ना उसके पीछे हम लगे रहते हैं। अब कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी कि उसमें उस छोटी सी कोई लड़की थी, उसके हाथ नहीं थे तो पैरों से वो सब अपना पूरी उसकी रूटीन बताई हुई थी, पर वो पैरों से मतलब नहाना, पैरों से लिखना, पेंटिंग करती थी आई थिंक। उसको देख के मुझे ये लगा कि देखो हम लोग क्या बेवकूफ लोग हैं, हम लोग कि कितना कुछ हमें मिला है पर हम लोग बिल्कुल भी उसको नहीं काउंट करते, है ना। अब एक कोई IAS ऑफिसर था, उनका सुन रही थी इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि जब भी मैं डिप्रेस हो जाता हूँ ना, डीमोटिवेट मैं फील करता हूँ ना, तो बोलते मैं शमशान घाट में चक्कर लगाने चला जाता हूँ कि जहां पे मैं देखता हूँ कि मेरे से छोटी उम्र के लोग जल रहे हैं, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो IAS लोगों को पढ़ा रहे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, है ना। तो मतलब दुनिया में अच्छे लोग भरे पड़े हैं, है ना, हम लोग अपनी बातों से नहीं बाहर आ पाते, अपने चार लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, हमें और कुछ लेना देना नहीं है औरों से, है ना। तो लोग कहाँ कहाँ पे सेवा कर रहे हैं, है ना, तो उनको देख के कितनी मोटिवेशन। तो वो कह रहे थे कि मैं जब भी डीमोटिवेट फील करता हूँ तो मैं चला जाता हूँ शमशान घाट, तो अपने ऐसे छोटे लोगों को देखता हूँ मैं जलते हुए, तो मुझे मोटिवेशन आती है कि यार देखो मैं जिंदा तो हूँ कम से कम, है ना। या फिर मैं चला जाता हूँ मेंटल असाइलम कि वहां पे लोगों को देखता हूँ मैं, जब उनके दुख देखता हूँ तो मुझे फिर मोटिवेशन मिलती है कि देखो मैं मेरी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है, है ना, और मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे छोटी सी प्रॉब्लम आई है, ठीक है मैं निकल जाऊंगा। फ्रेंड, जब भी हम डीमोटिवेट हो ना या हमें कोई प्रेशर लगे लाइफ में, तो हमेशा कोई अच्छे वीडियोज देखो ना आप, क्यों अपनी चॉइस बदलो थोड़ा। आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म देख के या फालतू की चीजों में जब हम एंगेज रहते हैं तो क्या यही लाइफ अच्छी है? नहीं, जब आप दूसरी लाइफ में घुसोगे ना, स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में घुसोगे, तो आपको लगेगा अरे ये सबसे बेटर है ना, इसमें तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा है ना। तो आप उसको देख पाते हो कि हाँ भी दुख भी आ रहे हैं, सुख भी आ रहे हैं, ठीक है अभी सुख में भी आप ज्यादा एक्साइट नहीं हो जाओगे, आपको पता है जैसे दुख चला गया तो ये सुख भी चले जाना, तो दुख में भी आप ज्यादा डिप्रेस नहीं हो जाते और सुख में भी ज्यादा एक्साइट नहीं हो जाते, है ना। तो इस तरह से हमें रहना है। और एक वीडियो भेजा था मैंने आज आपको, उसमें हमारे कई क्वेश्चंस थे, तो वो देखा था कि आप सबने, किस किसने देखा है वो वीडियो? स्पिरिचुअल लर्निंग में भेजा था मैंने अपने, कि जब तुम्हारा व्यवहार ही नहीं बदलता तो ऐसी भक्ति का क्या फायदा। देखा है किसी ने? अगर नहीं देखा तो फ्रेंड जरूर देखना, टॉपिक था आज का, तो मैंने भी बाद में देखा है, मैंने भी सुना, बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझे, तो आप लोग भी जरूर देखना। तो थैंक यू सो मच कोमल जी। हाँ जी, कोई और आज अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल।
फाइनली ईशा जी आती हैं कभी कभी कहाँ रहते हैं आप ईशा जी?
मौका मिल गया आज ना। बेसिकली ना छोटे बच्चे हैं, वो फोन, अब वो डिमांड बढ़ गई हुई है फोन की, वो बड़ी मुश्किल से आज भी ऑन किया था वीडियो, इसने ऑन कर दिया हुआ था, तो मेरा था कि मैंने ऑन रखा आज, ये यूट्यूब चला के सामने खाना खाता है, साथ में लगाया होता था, फिर भी सुनाई बीच में जो जो दिया फिर वही सुना मैंने आज भी। चलो फिर भी तो आज की हरी हरी बोल मोना जी, एंड हरी हरी बोल एवरीवन। तो काफी दिनों के बाद बोलने लगी, पता नहीं क्या क्या बोलूंगी, मुझे पता नहीं। तो जो आज की मेरी लर्निंग बनी है, जिसका मैंने सुना है कि आपने बताया कि सात्विक भोजन हमें करना चाहिए, कि श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि राजसिक सात्विक और तामसिक गुणों के बारे में, जो हम जैसा हम अन्न लेते हैं वैसा हमारा मन होता है, जैसा हम पानी पीते हैं वैसे पानी, वही उस पर ही आज आपने बताया हमें कि कैसे हमें सात्विक भोजन लेना है, हमें फ्रेश फ्रूट लेने हैं, फ्रेश फ्रूट फ्रेश फूड हर चीज फ्रेश लें और सात्विक लें, और जब सात्विक रहेंगे और उसको हम भोग लगाएं, जब उनको अर्पण करते हैं प्रभु को, अर्पण करने के बाद जब हम खुद और परिवार को देते हैं, वो प्रसाद और अमृत के समान होता है। जब वो अमृत हमारे अंदर जाता है तब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा मन भक्ति में लगता है, हम सेवा में लगता है, हर एक चीज में स्पिरिचुअलिटी में हमारा मन अपने आप ऑटोमेटिकली लगता है। और जिस दिन हमारा एक चेक भी हो जाता है कि जिस दिन हमारा सात्विक फूड नहीं गया, हमने बाहर से खा लिया या कुछ ऐसा भी कुछ खा लिया हुआ, वेज में ही कुछ ऐसा खा लिया, कुछ स्पाइसी या कुछ ऐसा, तो सात्विक में नहीं आता, तो जिस दिन वो खाते हैं तो उसकी थोड़ा सा भक्ति में भी या डिवोशन में थोड़ा सा मन भटकता है। तो इसीलिए रेकमेंड करते हैं कि हमेशा सात्विक भोजन लो, जिससे आपका डिवोशन अच्छे से हो पाए, और जब हम अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करेंगे, जैसे सोचते हैं तो वैसा ही वो बाद में परिणाम स्वरूप हम वो कर्म करते हैं। तो इसलिए सोच ही पिलर हमारे ठीक अच्छे होंगे तो आगे भी हम ठीक चलेंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे, सात्विक कार्य कर पाएंगे। और दूसरा आपने बताया कि निष्काम कर्म सेवा, क्योंकि हमें एक बताया कि जिस तरह से यज्ञ करते हैं लोग, कि यज्ञ करते हुए भी किसी चीज की कामना रखते हैं अपनी, कोई यज्ञ करते हैं कि हमने यज्ञ किया है दिखाने के लिए, या हम मंदिर या कहीं भी कुछ भी करते हैं, डिवोशन में कुछ करते हैं, तो एक हमारे मन में भाव आता है कि ये करेंगे तो हमें ये कामना हमारी पूरी हो जाएगी, हम ये करेंगे तो वो कामना पूरी हो जाएगी। कामना को लेकर जब हम यज्ञ कोई भी करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कुछ भी ड्यूटीज करते हैं, तो वो हमारी वो नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं एक यज्ञ की तरह नहीं चुना जाएगा, वो एक वो हो जाएगा, वो हमारी एक उसमें जिसमें निस्वार्थ भाव है वही हमारा यज्ञ है। यज्ञ को लेकर अगर हम चलते हैं तो हम जब अपने ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं, सेंसेस को कंट्रोल करते हुए अपने कर्म करते हैं, अपने एक निस्वार्थ भाव से अगर किसी की सेवा भी करते हैं, तो जैसे आपने एग्जांपल दिया बच्चों की, कि हम बच्चों की ड्यूटीज को ये ड्यूटीज करेंगे कि बच्चे आज हम करते हैं तो कल को ये भी हमारा करेंगे, अगर ये चीज सोच के चलते हैं तो ये यज्ञ में नहीं आता, ये हमारी एक कामना है कि आज हम करेंगे तो हमारा ये फल हमें मिलेगा। फल से रहित होकर जो काम कर्म करते हैं, जो परमात्मा की सेवा समझते हुए कि ये उन्होंने ही दिया है, ये परिवार, ये सब कुछ, ये सारी चीजें, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ जो उन्होंने दिया है, और उन्हीं को समर्पित करते हुए चले, वैसे ही कार्य करें जिसमें उनकी खुशी हो, वही हमारे लिए यज्ञ है। मुझे तो इतनी समझ आई है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज ईशा जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने पूरे श्लोकों को अच्छी तरह से समझा दिया। और फ्रेंड्स, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ आपको कि जो भोग का कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप भोग नहीं लगाते हो ना, तो फ्रेंड्स बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पर्सनली मेरे भी भोग को लेके मतलब बहुत ही अच्छे मतलब एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि भोग हमें लगाना चाहिए, और उस भोग को फिर प्रसाद रूप में हमें सबको खिलाना चाहिए, है ना। तो वाकई इससे कॉन्शियसनेस में बदलाव आता है। और पता क्या, जब हमें पता है कि भोग लगाना है हमें, है ना, तो हम उस खाने में 100% डालने की कोशिश करते हैं, वो भी होता है एक, है ना, हम एक अच्छी कॉन्शियसनेस से, हम एक मदर्स हैं, है ना, हम सब घर में मदर्स हैं, तो हम लोग खाना खुद ही बनाते हैं ऑलमोस्ट 99% लोग, है ना, बोलते हैं ना अच्छे मन से बनाना चाहिए। मैंने बहुत पहले भी सुना हुआ था, सिस्टर शिवानी को मैं फॉलो करती हूँ, तो उनको बहुत सुनती हूँ, तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई जो भी काम हमें करना है ना, मतलब खाना पे बहुत फोकस करते हैं वो, खाने पे, पानी पे, कि भाई हमें अच्छी कॉन्शियसनेस से खाने को बनाना है ना, उसमें भगवान का मंत्र जाप करते रहो, भजन लगा लो, है ना, ताकि हमारा मन कहीं और जाए ही ना, है ना। और जब हमें पता कि हमने भोग लगाना है, तो उस खाने को हम पूरा 100% अच्छा बनाते हैं। मतलब मैंने देखा ना, मतलब अगर कई बार सिंपल परौंठी भी लगाती हूँ, आपको बड़ी बार बोलती हूँ, परौंठी भी लगाती हूँ ना, नमक अजवाइन वाली, गुड़ घी के साथ, मतलब सब खाना चाहते हैं कि भाई मेरे को आज देना, मेरे को बड़े दिन हो गए ये खाए हुए, तो उसमें इतना टेस्ट लगता है उनको कि भाई इसमें ही सब कुछ है, बाकी जो खाना बना वो कई बार ना प्याज वाला खाना मैं भी बनाती हूँ, तो
उस दिन मैं फिर भगवान को ठग लेती हूँ, भगवान को गुड़गी वाला परांठी दे देती हूँ या फिर सूजी बना दूंगी। तो जो भगवान को खाना लगा होगा ना भोग, उस पे सब खा रहता है ध्यान की मेरे को वो खाना है ना। तो देखो अगर हम किसी को कॉन्शियसनेस को बदलना चाहे ना तो ये भोग सबसे बेस्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, है ना। पानी भी कर सकते हो भगवान को, जैसे पानी चढ़ाती हूँ सुबह तो फिर अगले दिन सुबह यूज करती हूँ उसको, बाकी पानी में मिक्स करके फिर सबको पानी देती हूँ, है ना। मॉर्निंग में जो सुबह गर्म पानी हम लोग पीते हैं, और जो खाना है वो भी आप सारे खाने में मिक्स कर लो, तीन टाइम का खाना है। अगर एक टाइम तो हम सब मिलके खाना खाते ही है ना घर में सब, है ना, तो उसको मिक्स करके हम खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो, अगर बच्चे नहीं भी एंगेज है डिवोशन में तो कुछ ना कुछ तो उनको जा ही रहा है ना, अच्छा सात्विक भोजन उनके अंदर जा रहा है और उनके कॉन्शियसनेस में 100% बदलाव होगा फ्रेंड्स, है ना। आप भी फील करोगे। तो जो लोग भोग नहीं लगाते वो प्लीज भोग जरूर लगाओ, है ना। तो ये सब चीजें हमारे लिए है फ्रेंड्स, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भोग लगाओ या ना लगाओ, सब चीजें हमारे लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए, है ना। थैंक यू सो मच ईशा जी। तो ठीक है फिर हम भजन की तरफ चलते हैं। नीना जी आज आपके भजन के टर्न है, भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी बोल एवरीवन। हाँ जी, आज का सत्संग भी हमेशा की तरह बहुत ही डिवाइन और बहुत ही मोटिवेशनल रहा। तो आज के सत्संग से मेरी यही लर्निंग्स बनी है कि जैसे कि आपने समझाया कि जो हमारी मतलब श्रद्धा है, वो जैसी भी हमारी श्रद्धा है वो हमारी चॉइस पर ही निर्भर करती है। यानी जैसी हमारी चॉइस होगी वैसी ही श्रद्धा हमारे अंदर क्रिएट होगी। और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि फूड मतलब हमारे भोजन पर भी, भोजन का भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट है कि हम किस तरह का भोजन लेते हैं, सात्विक तामसिक या फिर राजसिक। तो सच में फ्रेंड्स अब हमने ये बात मतलब समझी है कि रेस्टोरेंट का जो खाना हम खाते हैं रियली ये एक तरह से तामसिक ही होता है, क्योंकि पता नहीं कब का बना हुआ होता है। और कई मतलब अपने सर्कल में जब हम किसी से मिलते हैं तो कई एग्जांपल्स भी देते हैं कि ये सारा जो है किस्म से फ्रोजन फूड ही होता है, जो हम स्नैक्स वगैरह भी लेते हैं। तो जब हम ऐसा भोजन खाते हैं तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो भी नेचुरली तामसिक की हो जाती है, और फिर हम उसके अधीन ही अपने सारे जो है अपने कर्म करते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें इस चैप्टर से मतलब हमारी ये भी लर्निंग्स बनी है कि हमें जो है फूड बिल्कुल सात्विक लेना है। जब हम सात्विक फूड लेंगे तो हमारे जो मन के विचार हैं वो भी सात्विक होंगे। हमारे में मोना जी ने जैसे बताया बहुत सी क्वालिटीज जैसे पेशेंस, सहनशीलता, ये सब आएंगे। और इससे जो है हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर जिससे भी हम डील करते हैं वो भी अच्छा रहेगा। तो इसके साथ साथ आज के वर्ष में आपने ये भी समझाया कि हम जो भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी जो भी कर्म करते हैं, अगर वो हम बिना किसी आसक्ति के करेंगे तभी वो यज्ञ जो है सार्थक रहेगा। क्योंकि जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं और उसमें कोई हमारी उसमें कोई आसक्ति है, कुछ हमारा उसमें हमारा अपना जो है हमारा अपना कोई उसमें इच्छा छुपी हुई है तो वो यज्ञ कभी भी सार्थक नहीं है। यानी जो यज्ञ हम बिना किसी आसक्ति के करेंगे वही यज्ञ सार्थक है, और उससे हम क्या करेंगे, उससे हम प्रभु को भी प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु भगवद गीता के अध्ययन से हमने समझा कि प्रभु उन्हीं अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो कि बिना किसी आसक्ति के अपने सारे कर्म करते हैं और उनकी सेवा करते। तो हमने आज के सत्संग से मोना जी यही समझा कि हमें अपने अंदर सात्विक विचार लाने हैं, सात्विक फूड ग्रहण करना है, तभी हम जो है अपने जो है जीवन का मेन मोटिव भी समझ पाएंगे कि हमने ये जन्म क्यों लिया है, और हमारा जो है हमें जो अपने कर्म है वो किसी बिना किसी आसक्ति के करने हैं और प्रभु की सेवा भी मतलब ट्रू भाव से करनी है ताकि हम प्रभु को खुश कर सके और जो अपने सारे कर्म हैं उनको हम यज्ञ बना सके। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। तो आज मैं अपने भजन की ओर चलती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा याचना। तो आज का ये भजन मेरा राधा रानी के चरणों में अर्पित है। राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया। हे राधा रानी हे महारानी तेरे दर पे आ गया, मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, इस जग से बचाए रखना, इस जग से बचाए रखना। हे राधा रानी हे महारानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हे राधा रानी हे महारानी तेरा नाम सिमरूं, लागी राधा श्री राधा नाम लाली, लागी राधा श्री राधा नाम लाली। लगन ये लगाए रखना, लगन ये लगाए रखना। हे राधा रानी हे महारानी लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी हे महारानी कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में। हे राधा रानी हे महारानी कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, वृंदावन बसाए रखना। हे महारानी हे राधा रानी वृंदावन बसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, चरणों से लिपटाए रखना। हे राधा रानी हे महारानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी,
कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना हे राधा रानी हे महारानी कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी मैंने सुना है कि तुम बड़ी कृपालु हो दयालु हो जो भक्त है तुम्हारी शरण में आए हैं तुम उन पर कृपा करती हो। हे राधा रानी मैं भी तेरी शरण में आया हूँ तेरे चरणों में आया हूँ और एक आश्रय से आया हूँ कि मेरा जो प्रेम है आपके प्रति हे राधा रानी हे प्रभु वो कभी भी कम ना हो कभी मेरे हृदय में आपकी याद कम ना हो। मैं सदा तुम्हें बचता रहूँ मैं सदा तुम्हें ध्याता रहूँ इतनी कृपा करना हे किशोरी मेरे ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना अपनी कृपा के सागर को सदा मेरे ऊपर बरसाती रहे। तो फ्रेंड्स आज हम सबकी श्री राधा रानी से प्रभु श्री हरि से बस यही प्रेयर है कि वो यूं ही हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हमेशा ही हमेशा और हम ऐसे ही मोरा जितैया सत्संग सुनते रहे आत्म के इस रास्ते पर एक एक कदम करके आगे। हरी हरी बोल जी हरी हरी।